हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब झलक को इस तरह वहां से जाता हुआ देखकर आदित्य राणा का दिल और दिमाग पूरी तरह से कश्मकश का शिकार हो चुका था। झलक अपनी बात अधूरी छोड़कर चली गई थी और आदित्य ये जानना चाहता था कि आखिरकार झलक उसे किस बेसिस पर रिजेक्ट कर रही है। आदित्य के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर दादाजी बोले थे, अरे बेटा, वो थोड़ी सी ऐसी ही है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो, ठीक है? और हम आप लोगों की ठीक तरीके से खातिरदारी भी नहीं कर पाए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम बहुत जल्दी ही एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ ज़रूर आएंगे। ये बोलकर दादाजी ने सबका बड़े ही प्यार से अभिनंदन किया और मीटिंग को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि मीटिंग बड़े ही अच्छे माहौल के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में रखी गई थी, सभी गेस्ट्स के लिए लंच डिनर वगैरह भी अरेंज किए गए थे, लेकिन फ़िलहाल इतना सब कुछ हो चुका था और ऑलरेडी सारा टाइम इतने सारे ड्रामे में बर्बाद हो गया था, इसलिए सभी लोग वहां से जाने लगे थे। कहीं न कहीं सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि झलक ने सिर्फ कुछ ही लोगों को रिजेक्ट किया था और बाकी सबके साथ बिजनेस डील आगे बढ़ाने का फैसला किया था। वहीं शालिनी को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। ऑफिस के बाकी लोग, जिन्होंने ये सारा ड्रामा देखा था, अब बिल्कुल चुप हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ऑफिस किसी गहरे घने जंगल में बदल गया हो, जहां चारों तरफ अजीब सी शांति छाई हुई थी। सिर्फ फोन पर आने वाले मैसेज की बीप और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई अगर तेज सांस भी लेता तो उसकी आवाज़ तक साफ सुनाई दे जाती थी। तभी इस माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए आरव जी बोले थे, अनामिका बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है और थोड़ा सिर में भी चक्कर आ रहा है, क्या तुम मुझे वहां बैठा दोगी प्लीज? जैसे ही आरव जी ने ये कहा, दादाजी भी तुरंत आगे आए और उन्हें एक तरफ ले जाकर बैठाने लगे थे। आदित्य वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कई सवाल थे, क्योंकि उसके अलावा अब बाकी सब लोग वहां से जा चुके थे। फिलहाल शालिनी भी मुंह लटकाए एक तरफ जाकर बैठ गई थी। उसमें ना तो इतनी हिम्मत बची थी कि वो झलक से माफ़ी मांग सके और ना ही किसी से कुछ कह सके। वो बस एक कोने में जाकर बैठ गई थी। तभी अनामिका ने आदित्य की ओर देखा और बोली थी, हेलो आदित्य सर, अगर हमारी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप चाहें तो झलक से एक बार उनके केबिन में जाकर बात कर सकते हैं, हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाहती हों या फिर कुछ गलतफहमी हो गई हो। एक सेकेंड, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर अनामिका दादाजी की बातों का मतलब समझते हुए सीधा झलक के पास गई। वो झलक से बोली, क्या क्या कर रही हो तुम? तुमने सीधे सीधे आदित्य राणा के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। तुम जानती हो, मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की थी। वो इस शहर के नंबर वन और बेहद ब्रिलियंट बिजनेसमैन है। उनकी इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 5,000 करोड़ की है। तुम एक ही दिन में आकर ये सब कैसे कैंसिल करने का फैसला कर सकती हो? दादाजी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सोच समझ कर फैसला लिया करो, और वैसे भी वो दादाजी के दोस्त का बेटा है, तुम उसके साथ ऐसे नहीं कर सकती। अनामिका लगातार झलक को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन झलक बिल्कुल खामोश चेहरे के साथ बैठी रही। फिर उसने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे अंदर भेज दो, मैं उससे बात कर लूँगी। झलक का ये एटीट्यूड देखकर अनामिका झल्ला गई और बोली, प्लीज़ यार, थोड़ा सा एटीट्यूड कम कर लो, सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने सामने किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझ रही हो। मैं तो सोच रही हूँ, जब तुम्हारा अपने दुश्मनों से सामना होगा तो उनकी क्या हालत होगी। जैसे ही अनामिका ने बातों बातों में झलक के दुश्मनों सिद्धार्थ खुराना और आकांक्षा का नाम लिया, झलक का गुस्से से बुरा हाल हो गया। तभी अनामिका ने खुद को डांटते हुए मन ही मन कहा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इसके गुस्से को और हवा दे दी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा गुस्सा और नफरत आदित्य राणा पर ही निकल जाए, बेचारा वैसे ही मुझे काफ़ी मासूम लग रहा है। ये सोचकर अनामिका डरते हुए बाहर आई। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ आदित्य को देखा और बोली, अगर आपको बुरा ना लगे तो जाने से पहले मेरी बहन आपसे मिलना चाहती है, प्लीज़ आप एक बार उनसे मिल लीजिए। इतना सुनते ही दादाजी भी समझ गए थे कि शायद अनामिका ने झलक को समझाने की पूरी कोशिश की है और झलक अब आदित्य से माफ़ी मांग लेगी और अपना जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे। तो दादाजी भी मुस्कुराकर बोले, अरे हाँ हाँ बेटा, जाओ ना, जाओ जाकर तुम झलक बेटी से मिलो, और क्योंकि अब तुम लोगों को साथ में मिलकर काम करना है तो प्लीज़ बेटा, अभी वो बिजनेस में नहीं है, ज़्यादा चीज़ों की उसे नॉलेज नहीं है, तो अगर उसे थोड़ी बहुत गलती वगैरह हो जाए तो प्लीज़ देख लेना बेटा। अब जैसे ही दादाजी ने पूरी तरह से आदित्य से इस तरह की बातें की, आदित्य केवल मुस्कुरा कर रह गया और सीधा झलक के केबिन में दस्तक दी। झलक ने बेपरवाही से बोला था, कम इन। अब जैसे ही कमिन की आवाज आई, आदित्य जल्दी ही अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि झलक अपने सीईओ की चेयर पर बैठकर अपने फोन को लगातार स्क्रॉल पर स्क्रॉल किए जा रही थी। अब झलक ने बिना आदित्य को देखे ही कहा था, बैठिए प्लीज। आदित्य को उसका ये बिहेवियर काफी बुरा भी लग रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की कैसी है। तभी आदित्य दिलचस्पी से झलक को देखते हुए बोला, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, बताइए क्या बात थी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी आपने बाहर जो बोला था कि मैं आपको कुछ खास पसंद नहीं आया, उसका क्या कारण है, क्या मैं जान सकता हूँ प्लीज? जैसे ही आदित्य ने ये कहा, झलक ने एक आंख उठाकर उसकी ओर देखा, फिर अपना फोन बंद करते हुए अपनी दोनों कोहनियों को टेबल पर टिकाया और आदित्य को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, मिस्टर राणा, आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी आपकी कंपनी की हमारी कंपनी के साथ 500 करोड़ की डील के अराउंड समथिंग कुछ चल रही है और मैंने जो बोला था वो सच था। आपको बुरा लगे या फिर आई थिंक आप सच का सामना नहीं करना चाहते तो ये बात अलग है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने सिर्फ और सिर्फ वही बोला। और वैसे भी मुझे लोगों को मक्खन लगाना नहीं आता, जो जैसा है मैं उसे उसके मुंह पर वैसा ही बोलना पसंद करती हूँ। झलक ने जैसे ही गहरी सांस लेकर ये बात लगातार की, आदित्य चौंक गया। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वो अपना एक हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, ओके ग्रेट, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मिस मल्होत्रा को मुझ में क्या और कितनी सारी कमियां नजर आईं। तभी झलक ने हल्की सी मुस्कुराहट जबरदस्ती अपने होठों पर लाते हुए कहा, मिस्टर राणा, जिस तरीके से आपने हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मिस शालिनी गुप्ता के सामने हमारा फेवर लिया, रियली ये ट्रिक आपकी अच्छी थी, लेकिन आपको क्या लगा था कि आप इस तरह की बातें करेंगे, सबके सामने औरतों का पक्ष लेंगे तो हम लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, मैं और मेरी बहन आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी? हाँ जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं रियलिटी में विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो इंसान जिस चेहरे के साथ जहाँ मौजूद होता है वो असल में वैसा ही होता है। आप जानते हैं, उस मिस्टर वर्मा ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश जिसने की थी वो उसका असली चेहरा था। एटलीस्ट औरतों के हक में बोलने का या किसी भी तरह का दिखावा करने का उसने नाटक तो नहीं किया था, जो उसके मन में था उसने वही बोला था।
आई थिंक मिस्टर राणा, आप बेहद हैंडसम होंगे और आई थिंक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, सब कुछ आप होंगे, लेकिन ये अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाना, ये मुझे नहीं जमता। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आप पर हाथ उठाया था, इस बात का भी आपके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ था, और आज आपके पास अच्छा खासा मौका था हमें अच्छी खासी बेइज्जत करने का, हमसे बदला लेने का, लेकिन आपने उस मौके को भी अपने हाथ से जाने दिया और जानबूझकर हमारे सामने हीरो बनने की कोशिश की, ताकि लगे कि एक आदमी आया, बेचारी अबला नारी औरतों को बचाया और हीरो बन गया। लाइक सीरियसली, आखिर क्या रंग लगी झलक के आदित्य को लेकर गलतफहमी, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। यार दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, स्टोरी ज्यादा लंबी खिंच दी एंड ऑल। यार मुझे पता है कि एकदम से सारी चीज सस्पेंस सब कुछ खत्म हो जाए और तब फटाफट से स्टोरी देखने में मजा आता है, लेकिन यार आप लोग ही बताओ, अगर तब तक अच्छी तरह से स्टोरी की सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगी और एकदम से सारी चीज रिवील हो जाएगी तो मजा कैसे आएगा? और आप लोग प्लीज थोड़ा सा समझिए, स्टोरी मेरी कॉम्पिटिशन में डाली हुई है और आप लोगों के प्यार के साथ साथ हो सकता है मैं ये कॉम्पिटिशन जीत जाऊँ, तो उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर देना है, और अगर मैं 2-4 चैप्टर में ही सारा सस्पेंस सारी स्टोरी खत्म कर दूंगी तो फिर आप ही बताइए उसे क्या बेनिफिट होगा। तो प्लीज यार दोस्तों, अपना साथ आप बनाए रखो, थोड़ा सा जितना हो सके उतना मोटिवेट किया करो, और हाँ, आप लोग चाहे स्टोरी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी थॉट हो तो शेयर किया करो। जो भी बहनें मुझे पर्सनल मैसेज में कॉमेंट में आइडियाज देते हैं, मैं सभी के आइडिया रीड करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बनाई जाए। मुझे पता है कि आप लोग बस सीधा ये देखना चाहते हो कि झलक जाए और सिद्धार्थ की और आकर्षक की गर्दन उड़ा दे, लेकिन यार एकदम से वो ऐसे ही जाकर उनकी गर्दन उड़ा देगी तो आप लोग खुद कहेंगे कि ये लेखक ने क्या कर दिया, एकदम से ही जाकर सब कुछ खत्म कर दिया, फिर उसमें मजा कैसे आएगा? धीरे धीरे तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, सारा माहौल क्रिएट होगा, तभी तो सारी चीजों का मजा आएगा। बाकी यार आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, बस सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।